Ladies and gentlemen, you have been connected for Kamdhenu Group conference call. Please stay connected. We will begin shortly. Ladies and gentlemen, good day and welcome to Q4 FY24 earnings conference call of Kamdhenu Group. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on beliefs, opinions, and expectations of the company as on date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Satish Kumar Agarwal, Chairman and Managing Director. Thank you, and over to you, sir.
Good afternoon, and a very warm welcome to everyone present on the call. Along with me, I have Mr. Harish Agarwal, Group CFO, Mr. Saurabh Agarwal, MD of Kamdhenu Ventures Limited, and Strategic Growth Advisors, our investor relations advisors. We have uploaded our result and investor presentation for the quarter on the stock exchanges and company's website. Hope everyone had a chance to go through the same. We have delivered robust performance for both the steel and paint business in Q4 and FY24. Coming to our steel business first, India witnessed 13% surge in domestic steel consumption in FY24, totaling 136 million metric tons. This growth underscored a robust demand for steel across diverse sectors, highlighting the nation's economic resilience and industrial expansion. Moving forward, sustained investment in infrastructure, urban development, and manufacturing capacity are anticipated to uphold this momentum. With expanding industrial capabilities, coupled with the increased demand for infrastructural and residential projects, India is positioned to become a key global player in the steel sector, thereby further driving economic growth. For the quarter gone by, our revenue grew by 5% to Rs. 176 crore, PBT grew by 54% to Rs. 22 crore, and PAT grew by 56% to Rs. 17 crore. Despite the challenges we witnessed, including steel price volatility and fluctuating raw material cost, we continue to witness a strong volume growth. Total volumes, including franchisee sales volume, have increased by 12% year-on-year in the quarter gone by and 9% for the full year. We have seen reduced realizations of TMT bar, which has led to lower revenues for the full year. Over the last couple of months, we have seen price improving and we expect them to increase in FY25. Realization for steel TMT bar are poised for improvement due to escalating infrastructure investments. driving heightened demand and for construction material. Technological advancement ensuring super quality and compliance with stringent regulations further elevate the value proposition of TMT bars. Sustainable construction practices foster a growing preference for environmentally friendly materials, further improving realization for TMT steel. With a network of 8,500 plus dealers and a strong presence through our large number of franchisees, our brand's reach continues to expand significantly while being asset-light model. We have also a strong brand name when it comes to providing superior quality products, further emphasizing the company's commitment to excellence. Given this backdrop, we continue to maintain the dominant market share in the organized stainless steel segment. This is further cemented by a strong growth of 13% in our royalty income, which reached an all-time high of Rs. 129 crore. We continue to see large growth opportunities due to several industry tailwinds, including a strong government push for infrastructure, which includes schemes like Housing for All initiative and 11 lakh crore capacity outlay for FY25. And lastly, a shift of consumer preference towards branded construction material. Given the favorable dynamics within our country, coupled with our robust brand, unique asset-light model and high-quality product offerings, we are well positioned for sustained growth going forward. I would also like to mention that the company is raising Rs. 100 crore through issue of convertible warrants on preferential basis over the next 18 months. Of this, we have already received 24.27 crores. Through the capital raise, the company will look to remodel the franchisee business by acquiring stake strategically in some of the franchisee units, invest in existing and new business ventures in India or overseas for diversification, incur capex in existing manufacturing unit and or acquire to set up of new office premises and enhance the strengthen the brand position and corporate image to leverage the overall brand premium. We are excited about the opportunities that lie ahead and are grateful for the continued support and confidence for our stakeholders. Lastly, the Board of Directors have approved a dividend of 2 rupees per equity share, reaffirming our dedication to acknowledge and rewarding the trust placed in us by our shareholders. To conclude, we have successfully navigated through short-term challenges by leveraging our capabilities while maintaining unwavering efficiency and will continue to do so going forward. Now, I would like to hand over the call to Mr. Saurabh Agarwal to give you an update on the paint business. Thank you.
Thank you and good afternoon, everyone. I would like to give you a brief update on the paint business for the year gone by. The Indian paint industry is witnessing rapid growth driven by urbanization, rising disposable income, and the increased infrastructure projects. The industry is currently valued at Rs. 75,000 crore and is expected to reach a size of Rs. 1,25,000 crore by financial year 29, implying a CAGR of 9.4%. With a growing demand for premium and eco-friendly products, our ability to provide a wide range of solutions which is ever evolving in nature should help us stay competitive and grab market share in the evolving landscape. For the full year, financial year 24, we have seen a strong turnaround in our performance. Revenue grew by 12% year YOY and stood at Rs. 292 crores. In terms of profitability, I am pleased to share that our company has turned EBITDA positive compared to last year EBITDA stood at Rs. 22 crores. In addition, we have exceeded expectations by achieving an EBITDA margin of 8%, surpassing our FY25 target a year earlier. This can be attributed to achieving a strong economy of scale coupled with operative leverage playing out. Profit after tax stood at rupees 14 crore, which was rupees minus 11 crore last year, a delta of 25 crore rupees. Coming to way forward, for FY25, we have aspired to grow our business by over 20% and further improve our EBITDA margins. This growth was driven by both value and volume. On the value side, we will continue to make effort when it comes to increasing our average selling price by improving our sales mix with a higher focus on value-added products. On the volume front, we will further penetrate the regions where we have been building a strong dealer distribution network. We believe we can rapidly scale up due to us having a winning combination of our unique dealer-driven approach and our ability to deliver higher quality products at accessible prices. At Kamdhenu Paints, our unwavering focus remains on catering to undeserved, underserved smaller towns through our extensive distribution network, which stands at 4,300 plus dealers. With the economy expanding and a strong government focus on rural development, we expect a surge in demand for paint-related products due to the rise in infrastructure projects. To conclude, as we mark the conclusion of our inaugural year as a separately listed entity, it's evident that we have embarked on a journey marked by numerous positive developments. These early successes have set a promising trajectory for our company and its brands, indicating the potential for substantial growth in the time ahead. As we look to the future, we are acutely aware of the objectives yet to be achieved and the challenges that lie ahead. However, we are fortified by the unwavering support of our stakeholders, whose dedication has been instrumental in our journey thus far. With their continued backing and our commitment to excellence, we are confident in our ability to realize our objectives and propel our company and its brand to a new height of success going forward. With this, I would hand over the call to our Group CFO, Mr. Harish Agarwal, for the financial. Thank you all.
Thank you, sir. First, I would like to take you through the financials of the steel business. First, highlight for Q4 FY24. Our steel volume from franchisee route have stood at 8.96 lakh metric ton in Q4 FY24 compared to 8.05 lakh metric ton in Q4 FY23, a year-on-year growth of 11%. Royalty income through franchisee stood at rupees 35 crore in Q4 FY24 as compared to rupees 30 crore in Q4 FY23, a growth of 16% year on year. Total revenue stood at 176 crore in Q4 FY24 as compared to 167 crore, registering a growth of 5% year on year. Our profit before tax stood at 22 crore in Q4 FY24 as compared to 14 crore in Q4 FY23, a growth of 54% year on year. PBT margin stood at 12.6% for Q4 FY24, which was 8.63% in Q4 FY23. Profit after tax stood at 17 crore for Q4 FY24 as compared to 11 crore in Q4 FY23, a growth of 56% year on year. Now, I would like to share the highlight for whole year FY24. Our steel volume from franchisee route have stood at 32.56 lakh metric ton in FY24 as compared to 29.82 lakh metric ton in FY23, a year-on-year growth of 9%. Royalty income through franchisee stood at 129 crore in FY24 as compared to 114 crore in FY23, a growth of 13% year-on-year. Total revenue stood at 725 crore in FY24, registering a marginal degrowth of 1% year-on-year. Our profit before tax stood at 67 crore in FY24 as compared to 55 crore in FY23, a growth of 22% year-on-year. PBT margin stood at 9.2% for FY24, which was 7.5% in FY23. Profit after tax stood at 50 crore for FY24 as compared to 41 crore in FY23, a growth of 22% year-on-year. ROCE and ROE for the FY24 stood at 28.5% and 21.1% respectively. We continue to remain debt-free as on 31st March 2024. Let us go through the numbers of Kamdhenu Venture Limited paint business now. Kamdhenu Paint reported strong performance during the fourth quarter and full year ended fiscal 24. First, to give you the highlight for Q4 FY24, revenue for the quarter stood at rupees 85 crore as compared to 71 crore in Q4 FY23, a strong growth of 20% year-on-year. EBITDA witnessed a multifold jump and stood at rupees 7 crore for Q4 FY24 as compared to 0.1 crore in Q4 FY23. EBITDA margin stood at 8.5% for Q4 FY24. We also turned PAT positive. Profit after tax for Q4 FY24 stood at rupees 4 crore, which was minus 3 crore last year, a delta of rupees 7 crore year-on-year. Coming to the highlight for complete financial year 2024, revenue for the FY24 stood at rupees 292 crore as compared to 260 crore in FY23, a growth of 12% year-on-year. EBITDA stood at rupees 23 crore for FY24 as compared to 0.4 crore in FY23, highlighting a strong turnaround in the business. EBITDA margin stood at 7.7% for full year FY24. Our PAT stood at rupees 14 crore, which was minus 11 crore in FY23. Average selling price per kg for FY24 stood at rupees 90, higher by 14% compared to last year. With this, I would like to open the floor for question and answer.
Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Ladies and gentlemen, you may press star and one to ask questions, and if you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. We have our first question from the line of Richa from Equity Masters. Please go ahead.
Thank you for the opportunity, sir. So my question is, regarding the volume. So like you said that we have grown in the steel segment by 9% and the industry growth was 13%. So you just highlight what were the challenges, because this was the performance was also lower than the guidance that we had shared at EBITDA level and the blended revenue sales.
Actually, your voice is not clear. The voice is blurred.
Sir, is it better now? Huh. Am I audible now?
Yes, ma'am. Can you please use your handset?
Yeah, please repeat the question.
So my question was related to the volume growth. Like you said that we had 9% kind of growth as compared to industry growth of 13%. So there was some kind of underperformance with regards to the industry as well as our own guidance that we had shared in terms of EBITDA terms. So if you could just talk about the performance, what were the challenges that we faced during this?
Yeah,
मैम, जो समझ पा रहा हूँ मैं, आपका क्वेश्चन ये है कि जो मैंने अपने एड्रेस में कहा था कि इंडस्ट्री ग्रोथ 13% है और कामधेनु की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 9% है. यही क्वेश्चन है ना आपका?
सर यही क्वेश्चन है, और साथ में जो एबिटा जो आपने एक बार नंबर गाइडेंस में शेयर किया था दैट वाज अराउंड 80 क्रोर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 80 क्रोर्स का गाइडेंस था, एंड एट एबिटा लेवल आल्सो वी आर लोअर, सो इफ यू कुड जस्ट हाईलाइट द चैलेंजेस दैट वी फेस ड्यूरिंग द ईयर.
ठीक है ठीक है मैम, ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन एकदम सही है. जो नॉर्मल इंडस्ट्री ग्रोथ है वो नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनके हिसाब से जो नॉर्मल ग्रोथ आई है हमारे पास वो 11% ही है. और कामधेनु में हमारी अपनी ओन प्रोडक्शन की अगर हम देखेंगे तो कामधेनु की जो ओन मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे हमारी 29% ग्रोथ है ओन मैन्युफैक्चरिंग में. और जो फ्रेंचाइजी में है, फ्रेंचाइजी में जो ओवरऑल ग्रोथ है हमारी वो डेफिनेटली करीब 11%, ये कुछ कम रही है इसमें. इसमें दो तीन रीजन है. एक तो अगर आप देखेंगे कि जो पूरा एनसीआर में ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर करीब 2 से 2.5 महीने तक पूरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन रहा है पॉल्यूशन के एंगल के, पॉल्यूशन की वजह से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सेल्स में डिप रहता है पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में, उसका इफेक्ट हम पे आता है. और इसके अलावा हमारी इस साल जैसे है कि फ्रेंचाइजीज में हमने फोकस किया है कि हमारी रॉयल्टी कैसे बढ़े वॉल्यूम में, क्योंकि मार्जिन्स हमें अपना जो ओवर दी लोकल बेस्ट ब्रांड्स हैं उनके ऊपर मार्जिन अपना मेंटेन करते हैं. तो इस बार हमने रॉयल्टी की रिकवरी पे ज्यादा फोकस किया है और वॉल्यूम कंटिन्यूसली हम लोग इसमें कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं. कुछ यूनिट हमारी आनी थी इसमें प्रोडक्शन में जो और एक्सपेंशन हो रहा था वो यूनिट अब आके अप्रैल ऑनवर्ड हमारी आ गई है. और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है हमारी जो हम प्लान कर रहे हैं वो 16-17% की जो ग्रोथ है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे यहाँ स्टील में ऑलमोस्ट 9-10% ही रहे इस समय, तो हम लोग 16-17% के ऊपर जो है वो प्लान कर रहे हैं और इस साल होपफुली हम लोग जो है उसी को अचीव कर पाएंगे.
ओके ओके सर, थैंक यू फॉर द डिटेल्ड आंसर. आई हैव वन मोर क्वेश्चन सर, इफ यू कुड गिव मी एन आइडिया ऑफ हाउ बिग इज दिस टीएमटी मार्केट, टीएमटी बार मार्केट, रिटेल टीएमटी बार मार्केट, एंड इसमें ऑर्गेनाइज व्हाट वुड बी द ब्रेकअप बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, एंड ओवर द इयर्स डू यू सी एनी काइंड ऑफ शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज प्लेयर्स और इज इट मोर और लेस द सेम ओवर द इयर्स?
देखिए मैम, ये टीएमटी के जो ये डाटा है एस सच बहुत ज्यादा डाटा तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है किसी भी स्टील प्लांट के पास, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपको कि ऑर्गेनाइज मार्केट हम उसको मान के चल रहे हैं कि जो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इसमें जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लांट है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू और कामधेनु, तो इसमें हम ये सोचते हैं. इसके अलावा हमारे जैसे कामधेनु के जैसे कुछ ब्रांड और है मार्केट में, उनको अगर हम सोचेंगे तो वो एक तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. और इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स या बहुत सारी कंपनीज छोटी से बड़ी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो पूरे कंट्री में है. तो इसमें जहां तक वर्किंग हमने की है कि एक तो के कामधेनु का जो शेयर है ब्रांडेड ऑर्गेनाइज सेल्स में दैट वेरीज 22-23% इन द ब्रांडेड ऑर्गेनाइज मार्केट रिटेल सेगमेंट में. इसमें भी पर्टिकुलरली रिटेल सेगमेंट की जो सेल है उसमें कामधेनु डोमिनेट करता है, जहां पे हाईएस्ट सेल कामधेनु की है रिटेल सेगमेंट में 22%. इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो काम करते रहते हैं. हमारे पास भी बहुत सारी जैसे यूनिट का एसेट लाइट मॉडल में हमारा मॉडल यही है कि बहुत सारी ऐसी अच्छी यूनिट्स हैं जिनके पास अच्छी कैपेसिटी है, अच्छे प्लांट्स हैं, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पाते हैं एक प्रीमियम के ऊपर या क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कामधेनु के पास बहुत बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क है, नीश ब्रांड है. आज कामधेनु ब्रांड को लेके एक कंसर्न है हर एंड यूजर के माइंड में कि अगर हमने कामधेनु यूज करा है तो हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, हमारी बिल्डिंग को सेफ है, तो वो जो एक अवेयरनेस या एक माइंडसेट हम लोग परसेप्शन बना पाए हैं कामधेनु के बारे में, तो उसका लीवरेज हमारे को मिल रहा है और बहुत सारी यूनिट अनब्रांडेड से कामधेनु के अम्ब्रेला में भी आ रही है। इसके अलावा बहुत जैसी डिमांड बढ़ रही है, नेक्स्ट 5 ईयर में जैसे डिमांड को देखते हुए हमने लास्ट ईयर लगभग 32.5 लाख टन TMT बार बेचा है और स्टील के पाइप और कलर कोटेड शीट्स हम लोगों ने बेची है। अगले 5 साल में हम लोग इसको डबल करके ऑलमोस्ट 65 लाख टन का हमारा प्रोग्राम है कि 65 लाख नेक्स्ट 5 ईयर में इसको हम डबल करने की कैपेसिटी थ्रू फ्रेंचाइजी रूट हम लोग बिल्टअप कर रहे हैं। इस पर कंपनी काम कर रही है और आने वाले टाइम में जिस तरह से रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ हम लोग ये सब टारगेट जो अचीव कर पाएंगे।
थैंक यू सर। वी हैव द पार्टिसिपेंट डिस्कनेक्टेड। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। वी हैव अ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ मिस्टर प्रदीप रावत फ्रॉम योग्य कैपिटल। प्लीज गो अहेड।
Hi, thank you for the opportunity and congratulations on good sets of number. So I have a couple of questions. Can you share your outlook for the demand scenario in the steel business and what is the trend for the raw material prices and your outlook for the same?
देखिए जो future का जो outlook है steel segment का, अभी 8-9% मैक्सिमम आउटलुक है कि जो एनुअल ग्रोथ हमारे यहाँ स्टील सेगमेंट में आ रही है। और रॉ मेटेरियल की जो प्राइसेस हैं, आप देख रहे हैं कि रॉ मेटेरियल की प्राइसेस बेसिकली स्टील इंडस्ट्री जो है वहाँ कोकिंग कोल और आयरन ओर दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके ऊपर हमारी कॉस्टिंग बेस रहती है। तो नॉर्मली जो डॉलर के ऊपर या कोकिंग कोल की प्राइसेस के ऊपर प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं। बीच में कुछ पीरियड के लिए कुछ सॉफ्टन हुई थी। इसके अलावा आयरन ओर की प्राइसेस, चूंकि NMDC या गवर्नमेंट एजेंसीज ही इसको कंट्रोल करती हैं, तो वो प्राइसेस एज पर डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा वेरिएशन रहता है। अभी रिसेंटली हमने एक महीने में देखा है कि करीब 600-700 रुपये टन की प्राइसेस उसमें भी इम्प्रूव हुई है। और कामधेनु का जो मॉडल है हमारा एसेट लाइट मॉडल, क्योंकि हम लोग सेमी फिनिश प्रोडक्ट परचेज करके, हमारी सारी फ्रेंचाइजी सेमी फिनिश प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसको फिनिश में कन्वर्ट करके बेचते हैं, तो इसमें प्राइस रॉ मेटेरियल की प्राइसेस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कामधेनु पे या हमारी फ्रेंचाइजीज पे नहीं आता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। इसके अलावा कामधेनु का जो मॉडल है वो हम रॉयल्टी ऑन परसेंटेज बेसिस पे ना लेके फिक्स रेट पे लेते हैं, पर टन बेसिस के ऊपर जो एवरेज 400 से 450 वेरी करती है। तो कामधेनु पे इसका इम्पैक्ट जो प्राइस फ्लक्चुएशन का है वो मिनिमल रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे इफेक्ट कामधेनु पे आने वाले टाइम में प्राइसेस नीचे जाए या ऊपर जाए, तो कामधेनु की वर्किंग पे या प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट इसमें आने की संभावना वो कम रहती है।
Okay. So, what would be the sustainable margin given that the price fluctuation won't have much effect on our margins? So, what would be the sustainable margins that you foresee?
जो existing trend है, almost यही हमारा तो trend future में भी हम लोग maintain कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिएगा कि next 5 year में हम नॉर्मल जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो 9-10% मैक्सिमम जाएगी और कामधेनु जो वर्किंग कर रहा है 16-17% एनुअल ग्रोथ के ऊपर वर्किंग कर रहा है, तभी इसमें अगले 4-5 साल में हम लोग जो है अपनी सेल्स डबल कर पाएंगे। और जो मार्जिन्स हैं वो ओवरऑल मार्जिन जो है वो डिपेंड करता है कि हम रॉयल्टी कितनी हम लोग फेच कर, कितनी रॉयल्टी बढ़ा पाते हैं, कितनी वॉल्यूम ग्रो कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली जो एबिटा है फ्यूचर में वो आप समझ लीजिएगा कि जो आज अगर एबिटा जो है हमारा, जैसे ये पिछला साल गया है इसमें एबिटा 8.74% है, तो ये फ्यूचर में एबिटा भी इसमें, क्योंकि हमारी जो एक्सपेंसेस हैं ब्रांड बिल्डिंग एक्सपेंसेस हैं वो प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसमें एबिटा मार्जिन भी बढ़ेगा और आने वाले टाइम में जो पैट है वो भी बढ़ेगा इसमें।
Okay, so my other question is regarding the EBITDA margin on our own facility as of now.
देखिए बड़ा ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका जवाब थोड़ा सा टिपिकल है। जो मेरी ओन फैसिलिटी है मैं उसको बेसिकली यूज करता हूँ एज ए R&D यूनिट, जहाँ पे पिछले 15-20 साल में मैंने 7-8 नए प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। इसके अलावा मेरी जो मेन यूनिट है वो हमें अपनी सभी फ्रेंचाइजी की जो स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, कमर्शियल स्टाफ है, क्वालिटी कंट्रोल के लोग हैं, उनको एज ए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज करता हूँ। तो बहुत सारी कॉस्टिंग मेरी अपनी यूनिट में बुक होती है और मैं जो प्रोडक्शन मेरी होती है वहां पे वो मैं NCR में सेल करता हूँ। क्योंकि बहुत सारा कॉमन स्टाफ है, ऑफिस में कॉमन लोग हैं, तो उसको सेपरेट एंटिटी उसको एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मेरी एक जो मोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, इसको हमारे को ज्वाइंटली एक साथ ही जोड़ के देखना पड़ता है।
ओके, फेयर इनफ. आई विल ज्वाइन द क्यू एंड आस्क अगेन लेटर. थैंक यू.
ओके, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर. अ रिमाइंडर टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, यू मे प्रेस स्टार एंड वन टू आस्क क्वेश्चंस. अ रिमाइंडर टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, यू मे प्रेस स्टार एंड वन टू आस्क क्वेश्चंस. वी हैव आवर फॉलो अप क्वेश्चन फ्रॉम द लाइन ऑफ रिचा फ्रॉम इक्विटी मास्टर. प्लीज गो अहेड.
सर थैंक यू अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी. सर माय क्वेश्चन इज कि वी हैव अ फ्रेंचाइजी मॉडल व्हिच मेक्स अस एसेट लाइट. आई जस्ट वांटेड टू गेट अ सेंस ऑफ कि अगर
सॉरी टू इंटरप्ट मिस्टर रिचा, बट योर वॉइस, यू आर नॉट ऑडिबल, योर वॉइस इज ब्रेकिंग.
सो माय क्वेश्चन इज, आई जस्ट कीप इट शॉर्ट, आई एम नॉट श्योर देयर इज सम नेटवर्क इशू. इफ समबडी वांट्स टू सेट अप अ कैपेसिटी, ग्रीनफील्ड कैपेसिटी ऑफ 1 लाख मेट्रिक टन ऑफ इंडस्ट्रियल बस, व्हाट काइंड ऑफ केपेक्स इज रिक्वायर्ड फॉर दैट?
मैम, इफ समवन नीड्स ए कैपेसिटी ऑफ 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम, दो राइट नाउ दिस कैपेसिटी इज वेरी मच लेस एंड इज नॉट प्रैक्टिकली वायबल, एटलीस्ट यू हैव टू इंस्टॉल मंथली कैपेसिटी ऑफ 12 to 15 लाख, 15,000 मेट्रिक टन. दैट मीन्स एटलीस्ट यू नीड टू इंस्टॉल ए कैपेसिटी ऑफ 2 लाख मेट्रिक टन एनुअली, एंड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 2 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी यूनिट यू नीड अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 करोड़ अपार्ट फ्रॉम दी लैंड, बिकॉज लैंड इज वेरिएबल, वेर एवर यू वॉन्ट द लैंड इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस कॉस्ट, बट द एंटायर प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्स एटलीस्ट 70 to 80 करोड़. इफ लैंड इज 20 लाख 20 करोड़, देन दी टोटल कैपेक्स वुड बी 100 करोड़. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड एटलीस्ट 30 to 40 करोड़ ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑल्सो.
ओके. एंड सर, ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बेस्ड ऑन मार्केट रेट और मार्केट डिमांड, इसमें प्रीमियमाइजेशन का कोई स्कोप है क्या? एंड इफ येस, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर वी डूइंग टू इम्प्रूव, यू नो, टू मूव टूवर्ड्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट?
देखिए रिचा जी, ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ही हम लोग बना रहे हैं. अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो स्टील सेगमेंट है ये एज ए कमोडिटी है, और 1995 में जब हमने कामधेनु का ब्रांड ये मार्केट में लॉन्च किया था, उससे पहले ये एज ए कमोडिटी ही बिकता था. कामधेनु पहली ऐसी यूनिट है जिसने कमोडिटी को ब्रांड में कन्वर्ट किया. आज आप देखेंगे कि जितना भी TMT बार बन रहा है इंडिया में, कोई ना कोई सेलिब्रिटी, चाहे इधर क्रिकेट स्टार और फिल्म फैटर्निटी के लोग, सब वो उसको प्रमोट कर रहे हैं. तो आज और इतनी अवेयरनेस हम लोगों ने पिछले 26 साल में लोगों तक हमने कम्युनिकेट की है कि उनको ये महसूस होने लगा है कि अगर कामधेनु या हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे हैं तो हम अपनी लाइफ से खेल रहे हैं या मेरी बिल्डिंग सिक्योर नहीं है. कामधेनु में यही हम लोगों को एजुकेट कर पाए कि आप कोई भी चीज, इंटीरियर चेंज कर सकते हैं, पेंट चेंज कर सकते हैं, फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपना स्टील नहीं चेंज कर सकते. तो लोग अब समझते हैं, तो सब लोग आज क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। ब्रांड क्या है? ब्रांड पे कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी एश्योरेंस है। तो कामधेनु का ये एक हमारा ड्रीम था कि हम एक कॉमन आदमी के लिए, जिसको एक टन से लेके 5 टन 10 टन की रिक्वायरमेंट है अपना घर बनाने के लिए, तो उसके लिए हम लोग एक क्वालिटी प्रोडक्ट एक रिजनेबल कॉस्ट पे दे पाए, तो आई थिंक वो हमने काफी हद तक फुलफिल किया है। और आप चूंकि बहुत सारे लोग मेट्रोज में बैठे हैं, तो वो शायद इसको समझ नहीं पाते हैं कि वो लोग इंडिविजुअल घर भी बनाते हैं। मेट्रोज में चूंकि हाई राइज सोसाइटी है, लैंड कम है, तो उसकी वजह से वहां पे सब बिल्डर्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन अक्रॉस इंडिया सिंगल स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी घर बनते हैं, लोग अपने आप बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ हमने, हमारा फोकस उसी पे था, और दिस ईयर ऑनवर्ड हम लोग फोकस कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर थ्रू आर्किटेक्ट्स बिल्डर्स स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के थ्रू भी हम फोकस प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हमारी प्रोजेक्ट्स की भी सेल है, वो भी इसमें एडिंग होगी।
अच्छा, एंड सर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प अस यू नो स्ट्रक्चर और गेट आर रॉयल्टी पर टर्न टू इंक्रीज फ्रॉम अ फ्रेंचाइजी प्लेयर्स? सो लाइक यू सेड इट वेरीज फ्रॉम 350 और 400 टू 450, so how much time does a particular franchisee take to reach its optimum capacity, and you know over what period can we increase this royalty per volume?
देखिए मेरे फ्रेंचाइजी की स्ट्रेंथ क्या है कि जो यूनिट अगर अपना ब्रांड बनाती है तो वो ऑलमोस्ट अपनी कैपेसिटी का 30-40% मटेरियल एक नॉर्मल रेट पे बेच पाती है। वंस कामधेनु के साथ एसोसिएट करते हैं, मेरा कामधेनु का ब्रांड यूज करते हैं, कामधेनु का रिटेल नेटवर्क यूज करते हैं अक्रॉस इंडिया, तो जो प्रीमियम है वो लगभग 2500 रुपए टन का प्रीमियम आज पूरे इंडिया में एवरेज आउट है, जो वेरी करता है, कहीं 1000 रुपए टन है तो कहीं 6000 रुपए टन है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि 30-32 लाख टन के ऊपर ये 2500 रुपए टन का जो प्रीमियम है, लगभग 800 करोड़ रुपए का प्रीमियम जनरेट कर रहा है। जो कामधेनु एज ए रॉयल्टी चार्ज करता है, कुछ प्रीमियम मेरा डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करता है, जो कुछ मार्केट में अपना फंड्स इन्फ्यूज भी करता है, लगभग 450-450 रुपए टन उसकी कॉस्ट आती है। इसके अलावा 700-800 रुपए टन हमारा जो रिटेल आउटलेट है उसका मार्जिन होता है, और बाकी पूरा मार्जिन जो है मेरी फ्रेंचाइजी को मिलता है। तो मेरी फ्रेंचाइजी को ये बेनिफिट है कि जो भी अगर वो अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और कामधेनु से जुड़ने के बाद 700-800 रुपए टन का उन्हें प्रीमियम एक मिलता है। दूसरी बात, उनकी जो ऑर्डर बुक है वो हमेशा पूरी तरह से बुक रहती है, जितनी कैपेसिटी है सब लोग ऑलमोस्ट 70-60% यूटिलाइज कर रहे हैं। नॉर्मली स्टील सेगमेंट में चूंकि सिंगल शिफ्ट पे काम होता है, तो नॉर्मली उतनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो इस एसेट लाइट मॉडल में जो भी हमारी फ्रेंचाइजी है, सब लोग विन विन पोजिशन में रहती है, और कंज्यूमर का इंटरेस्ट हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि कंज्यूमर तक हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल कॉस्ट पे दे पाए। इस मॉडल में हमने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किए हैं, हमने फ्रेंचाइजी के विदिन 200-300 किलोमीटर के अंदर ही हम सप्लाई करते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहां पे मिनिमम हो उसको।
तो इसमें स्कोप लाइक प्रोजेक्शंस वी हैव टू कंसीडर दी पर वॉल्यूम जो भी हम लोग 300 और क्लोज टू 400 है, सो गोइंग फॉरवर्ड डू यू थिंक देयर वुड बी अ मीनिंगफुल इंक्रीज इन दैट और सम काइंड ऑफ इंडिकेशन इफ यू कैन गिव ऑन दैट फ्रंट, और इज इट लाइकली टू बी इन द सेम रेंज?
देखिए ये मार्केट ड्राइव करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा कि किस एरिया में कितना प्रीमियम है। अगर आप देखेंगे तो मेरी भी रेंज है, जहाँ प्रीमियम कम है थोड़ा कंपैरेटिवली तो वहाँ मैं रॉयल्टी कम चार्ज करता हूँ, जहाँ प्रीमियम ज्यादा है वहाँ मेरी रॉयल्टी ज्यादा है। और आने वाले टाइम में जहाँ डिमांड एंड सप्लाई या कामधेनु ब्रांड का जो प्रीमियम है वही डिसाइड करेगा कि मैं कितना प्रीमियम या क्या रॉयल्टी उनसे चार्ज कर सकता हूँ। एज सच जब भी हमारा रिन्यूअल होता है एग्रीमेंट का, हम म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से हर फ्रेंचाइजी से कुछ ना कुछ रॉयल्टी रिवाइज कर लेते हैं। और आप ये समझिएगा कि रॉयल्टी जो है, अभी हमारा जो ये मार्च 24 एंड हुआ है, यहाँ पे एवरेज आउट हुआ है 395, और नेक्स्ट 5 ईयर में हमारा टारगेट है इसको 500 रुपीज का एवरेज लाता है, इस पे कंपनी काम कर रही है।
ओके, Sir, my last question is if you could share any target for, you know, your dealer expansion in your dealer network, as well as, you know, any kind of trajectory for branding expense. Will it be as a percentage of sales or volume? If you have any kind of budgeting, if you can share any kind of budgeting on that front. Dealer network and branding expense on these two fronts.
देखिए, डीलर एक्सपेंशन का काम एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली है, और जो हम जो आपसे बात कर रहे हैं कि प्लस 8,500 मेरे डीलर हैं, मैं ये वो डीलर है जो कामधेनु से डायरेक्टली अंडर एनी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है। इसके अलावा इन डीलर्स के नीचे बहुत सारे सब डीलर्स ऐसे होते हैं रूरल एरियाज में जो हमारे से डायरेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, जो हमारे रिटेल काउंटर के साथ काम करते हैं। और आप ये देखिएगा कि जो ब्रांड एक्सपेंसेस हैं, इससे कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट हमने फ्रेंचाइजी और कामधेनु ने मिलकर ऑलमोस्ट 59 करोड़ का ब्रांड स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने एक्सपेंसेस इस साल इनकर किए हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो इस साल रॉयल्टी या जो मेरी क्वांटिटी है, क्वांटिटी मेरी लगभग 37 लाख टन का एस्टिमेट मेरा है, और अगले आने वाले टाइम में 29 तक हम इसको 68 लाख मेट्रिक टन के हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ग्रोथ है और कंटिन्यूअसली ऑल अराउंड ग्रोथ है। अभी हमने इसमें, चूंकि हमारा जो कामधेनु जो पाइप है, स्टील पाइप है, पाइप की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, उसपे भी फोकस कर रहे हैं कि उसको कैसे हम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसमें ग्रोथ ला सकें। और इसके अलावा कलर कोटेड शीट जो हम लोग अपनी फ्रेंचाइजी से बनवाते हैं, उसपे भी फोकस कर रहे हैं कि वेयर हाउसेज और इंडस्ट्रियल सेट की रिक्वायरमेंट कैसे उसमें है। बहुत सारी चीजें भी पोटेंशियल है, सबको एक्सप्लोर करते हैं, कुछ लिमिटेशन भी रहती हैं। ओवरऑल ये रहता है कि कंपनी की किसके रहे मल्टीफोल्ड ग्रोथ है और इनऑर्गेनिक ग्रोथ आए। ऑर्गेनिक ग्रोथ तो नॉर्मली स्टील में 8-9% से ज्यादा कभी होती नहीं है।
ओके ओके। अच्छा, ये 8500 प्लस डीलर्स में से एक्टिव कितने हैं? 8500 इज रजिस्टर्ड, हाउ मेनी वुड बी एक्टिव?
सभी 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 सब ऑल एक्टिव हैं, रजिस्टर्ड हैं। और देखिए, जैसे जहाँ जहाँ जरूरत होती है नए डीलर हम लोग अपॉइंट करते रहते हैं। एक्चुअली कामधेनु का एक थोड़ा सा इसमें मार्केटिंग का मेरा यूएसपी है कि बहुत ज्यादा डीलर नहीं बनाता हूँ, अदरवाइज वो सब आपस में कंपटीशन करते हैं। तो वे पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ही दूसरे डीलर को अपॉइंट करते हैं ताकि उनमें आपस में इंटरनल कंपटीशन ना हो और सब एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर रीजनेबल मार्जिन पे काम करें, इंटरनल कंपटीशन ना हो।
ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।
थैंक यू मैम।
थैंक यू। A reminder to all participants, you may press star and one to ask questions. We have a next question from the line of Payal Shah from Billion Securities. Please go ahead.
Good afternoon, sir. Thank you so much for the opportunity. I have a few questions on our paint business. First would be, what would be our FY25 and FY26 revenue, EBITDA, margin outlook, anything that you can give on FY25 and FY26, that would be helpful.
अब मैम पेंट की बात कर रही हैं, स्टील की बात कर रही हैं?
नहीं नहीं तो पेंट बिजनेस की बात कर रही हूँ,
पेंट के बारे में। ये हरी जी आपको थोड़ा बताएंगे।
मैम, वी आर एक्सपेक्टिंग टर्नओवर ऑफ अराउंड 380 करोड़ इन FY25 एज अगेंस्ट 292 करोड़ इन दिस ईयर। And we are also expecting EBITDA of 9.5% against the 8% in this year. So we have the plan to achieve this target, and we have given this target to our team, and we are hopeful that we shall be.
Okay, sir, that's quite helpful. My second question is, what will be our target split between value and volume growth for our paint business going forward?
Our main focus is on the value-added product, premium product, water-based emulsion product. So we are focusing on the top line with the target of having margins in that product. So we are not focusing on the quantity. We are focusing on the value-added product, and which increase the top line and bottom line.
Okay, sure. And also my last question is, are you seeing any competitive pressures when it comes to pricing, and how do we plan to gain market share if such competition continues?
We are focusing on the tier two, tier three cities for the market expansion point of view. And with regard to cost control, we have innovative products where costing is less than their results. So we are focusing on the premium product with the help of our R&D team, and we are making cost control on those products.
Oh, okay, sure, sir. That's quite helpful. Thank you so much.
Thank you. We have our next question from the line of Rajvi Shah from Bright Securities. Please go ahead.
Yeah, thank you for the opportunity. I had few questions on the paint business. The first one is, do we expect any raw material volatility for the paint business, and would we be able to easily absorb that in our GP, like gross profit?
So what is the second question? One is the raw material cost, then?
Yeah. So, like, do we expect, like, the raw material volatility to be absorbed in our gross profit?
Now prices are almost firmer, and it was fluctuating in the past, but now prices are more or less firmer, and we are not seeing any much fluctuation in the raw material prices. In case these volatility increase the raw material prices, then obviously market will take a call and increase the selling price.
Okay. So my next question was, what are the active initiatives to gain more market share in decorative paints market?
We are increasing our dealer network. We are introducing new product. We are also have some value-added product which will increase our market share.
Okay, and I just had one more last question. There has been a slowdown in overall consumption. Has this also affected our paint business?
Can you repeat the question?
Yeah. There has been a slowdown in overall consumption. So has this also affected our paint business?
Which slowdown you are talking? There is no slowdown in the economy, no slowdown in the market, real estate.
Like an overall paint business.
No, there is no slowdown in the paint business. Every year, it has a CAGR of around 8%-9%, and we are also increasing our market share. So there is no slowdown in the paint market or real estate market, which have main consumption.
Okay, I'll check. No problem. Thank you. That was helpful.
Okay. Okay, ma'am.
Thank you. We have our next question from the line of Ruchi Gupta from Value Consultancy. Please go ahead.
Hi, am I audible? Hello?
Yes, ma'am, you are.
Yes.
Please go ahead.
Yes. Sir, I have questions regarding the paint business. So,
Sorry to interrupt, ma'am. We are getting a lot of disturbance from your end.
Yes, sir. Sir, hi. Am I audible now?
Hello?
Yes, ma'am. Please go ahead now.
Yeah. So I have questions regarding the steel business. So just wanted to know, when can we expect to deploy the 25 crores that cash that we received post our fundraise?
Yeah, we are expecting to deploy this fund in this quarter. In the Q1, we will deploy that. We are working on that.
Okay, okay. My another question is, what are the current and peak level realizations for TMT steel bars, and when can we expect it to reach the previous peaks of realization?
Yeah, it is increasing, but right now, last year average is around 49,000.
Okay.
49,000 was the last year average price.
Mm-hmm.
Which was 52,000 in the FY 2023.
Okay, okay, sir. Yeah. Thank you. That's helpful. All the best.
Thank you. A reminder to all participants, you may press star and one to ask questions. We have our next question from the line of Atul Daga from Opal Securities. Please go ahead.
Hello.
Yes, Mr. Atul.
Yes.
So I have questions for the steel business. We haven't added many franchises in the recent past. What would our goal when it comes to adding franchises like going forward?
What is the question?
You
are talking about the number of franchises?
Yes, yes.
Yeah, we are not focusing on increasing the number of franchisee. In fact, we are focusing on the increase of the capacity of the units. So, capacity has increased in last 1 year, and we are also expecting to increase the existing level to 50 lakh metric ton in this financial year. So, we are making a resume for expansion of capacity within the existing unit. So we are giving more opportunities to the existing unit rather than adding the new unit. If they are not able to increase their capacity due to any reason, so we are looking for increase of the new unit in that particular reason. But our focus is on increase the capacity of existing units. That is why it is not increased.
Okay. So coming to my next question, how much franchisee capacity would we be looking at for FY25?
It would be increased to 50 lakh metric ton from the existing 40-41 lakh metric ton to 50 lakh.
50 lakh, okay.
Yes.
Also, sir, what would be our aspirational targets for revenue and then PBT PAT going forward? Any guidance for the next couple of years?
Yes. For steel business?
Yes, yes.
Yeah, we are targeting double of the revenue in next 5 years. In this year, we achieved around 32.5 lakh metric ton of steel through the franchisee route. In the next 5 years, we are targeting to make it 68 lakh metric ton through the franchisee route only.
Okay, okay. That would be all from my side. Thank you, sir.
Thank you, sir. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. Over to you.
I would like to thank you everyone for being part of this call. We hope we have answered your questions. If you need any more information or clarification, please feel free to contact us or Mr. Devendrava from SGA, our investor relation advisor. Thank you.
Thank you. On behalf of Kamdhenu Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.